તારીખ 13/5/1994 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકના 7મા અધિકાર ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 93.
શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક સાતમો અધિકાર છે. જૈના ભાષી મિથ્યા દ્રષ્ટિનું સ્વરૂપ. જૈન કુળમાં જન્મ છે, સનાતન દિગંબર જૈન કુળમાં જન્મ થયો છે. સાચા દેવગુરુ શાસ્ત્રને માને છે, પૂજા ભક્તિ આદિ કરે છે, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરે છે. તેમ છતાં સ્વાનુભવના વિષયમાં અજાણ્યો રહે છે. એવા જીવને સમ્યક્ત્વાદી મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ નથી, તેથી તે અન્ય મિથ્યા દ્રષ્ટિની જેમ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. ગુજરાતીમાં ચાલેગા? નહીં સમજવાય? હિન્દી મેલે ક્યા કહેતા હૈ આપકો ભી ગુજરાતી સમજ મેં નહીં આવેગા. આપ ઇસકો રખે થોડા ગુજરાતી કા અભ્યાસ હો જાયેગા. સાતવા અધિકાર મેં વો ચલ રહા હૈ કે જૈની હૈ, જૈન શાસ્ત્ર કા અભ્યાસ કરતા હૈ, ફિર ભી એ યથાર્થ અભ્યાસ હોને કે કારણ સે, યાને સિર્ફ આગમ અભ્યાસ હોને કે કારણ સે. આગમ કા અભ્યાસ તો ઠીક હૈ, ફિર ભી અનુભવ વિષય કોઈ પ્રયાસ નહીં, પ્રયત્ન નહીં, પ્રયોગ નહીં, ભાવ ભાષણ નહીં, ઇસલિયે ઉનકો મોક્ષ માર્ગ કી પ્રાપ્તિ નહીં હૈ. આગમ અભ્યાસ હોને કે બાવજૂદ ભી વો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હી રહેતા હૈ, સમ્યક જ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ ઉસકો નહીં હોતી હૈ. યો વિષય શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરને વાલે કો સમજના બહોત પ્રયોજનભૂત હૈ. हम दूसरे क्रियाकांड में नहीं रुकते, नहीं उलझे हुए हैं या कम करते हैं. पूजा भक्ति आदि शास्त्र स्वाध्याय विशेष रूप से करते हैं, तो हमको तो खास इस विषय में ध्यान देना आवश्यक है. तो यही प्रकरण चलता है यहाँ सातवें अधिकार में. दो सौ चालीस पेज है आपके गुजराती में, हिंदी में है 220. बहुत घो फर्क पाना ગુજરાતી મેં તો 240 હૈ, હિન્દી મેં ક્યા હૈ જરા દેખને કા. બંધ તત્વ કા સંવર તત્વ કા અન્ય થા તો આ ગયા, કામ નિર્જરા વાલા આ ગયા, મોક્ષ તત્વ કા આ ગયા, સમ્ય જ્ઞાન કા અન્ય થા રૂપ. 237 237 से ઉપર સે લેના હૈ હિન્દી મેં. પ્રથમ સચ્ચા તત્વજ્ઞાન હો, પ્રશ્ન સે લેના હૈ ને? પેરેગ્રાફ પૂરા હો ગયા હૈ. હા, ऊपर से लेना है, ऊपर से। प्रथम सच्चा तत्वज्ञान हो वहाँ फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने, शुद्धोपयोग से मोक्ष जाने। जानकारी तो सही कर ले पहले, यानी समझ की भूल तो निकल जाए। गुणस्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने, 14 गुणस्थान का स्वरूप जाने, वो व्यवहार निरूपण है। निश्चय निरूपण में जीव को गुणस्थान नहीं है, वो तो एक अभेद अखंड अनादि अनंत जैसा है वैसा है। इत्यादि झोंका त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान हो। तो तत्वज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग शास्त्र है। तत्वज्ञान के मुख्य शास्त्र कौन से हैं? चार अनुयोग में द्रव्यानुयोग है। और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, ये आप ना, ये हमको लागू होता है हमारे समाज को, कि कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, परंतु जहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके अपने आप को आप रूप और पर को पर रूप और आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धान नहीं करते। भाव भाषण पूर्वक निर्णय करके, माने भाव भाषण करके अब अभ्यास किया, लेकिन यथार्थ भाव भाषण पूर्वक वो अभ्यास नहीं किया, वो बात कहेंगे। हाँ, वो तफावत है। अभ्यास तो किया, दुर्बल न कि कितने जीव उतना तो करते हैं, शास्त्रों का अभ्यास भी तो करते हैं, हम भी करते हैं, परंतु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके। भाव भाषण, निर्णय में भाव भाषण आता है, भाव भाषण वाले को ही निर्णय कहते हैं। हम वैसे तार्किक निर्णय करते हैं, वो निर्णय बराबर यथार्थ नहीं है, वो कहेंगे आगे, स्पष्टीकरण आएगा उसका। मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे, क्या मुख से तो, यानी उनको कंठस्थ हो गया सब बात, बुद्धिक बौद्धिक स्तर पे बराबर समझ में आ गया, तो ऐसा यथावत निरूपण करे कि जिसके उपदेश से अन्य जीव भी सम्यक दृष्टि हो जाए। इसके निरूपण से हो जाए मतलब क्या है, को निरूपण तो आगम का जो श्री गुरु का था वो वही का उपदेश था। उपदेश किसका था? श्री गुरु का, भावलिंगी संत का था। उसी अनुसार उसने कहा, तो किसी को भाव भाषण हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, उनको पता चल जाता है कि कहने वाला ने, कहने वाले को भाव भाषित नहीं हुआ है। यहाँ जो भाव भाषण हमको होता है वो कोई ऐसा जीव लेना है यहाँ कि पूर्व, हाँ पूर्व का संस्कारी हो, दूसरे को ऐसा नहीं होता। तो उसको हुआ पूर्व संस्कार और आगम वचन निमित्त हुआ, वो मिथ्या दृष्टि वास्तव में निमित्त नहीं हुआ है, आगम वचन निमित्त हुआ है। और उनसे उसको पता चल गया कि कहने वाले को तो भाव भाषण नहीं है, ऐसा उनको पता चल जाता है। परंतु जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाए, कोई कामुक संगीत हो, ऐसा कोई गाना उसको सिखा दे, तो उस गाने का अच्छी तरह उनको कला भी हो, लेकिन गाने में क्या बात है वो उनको पता नहीं है, न इनका कोई भाव भाषण होने की कोई उम्र भी है, छोटा लड़का है, परंतु वह तो जैसा सीखा है वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भाषित नहीं होता। आता है भाव भाषण का प्रकरण, उसे कुछ भाव भाषित नहीं होता, इसलिए स्वयं कामासक्त तो नहीं होता, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि इसके भाव क्या है। ठीक उसी प्रकार यह जीव जैसा लिखा है वैसा उपदेश तो देता है, बौद्धिक स्तर से उनको समझ में आता है, लिखा है ऐसा उपदेश भी देता है, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। अनुभव की दिशा में उसका कुछ भी प्रयास नहीं है, इसलिए भावभाषण भी नहीं है और अनुभव भी नहीं है। तब तलाश कर लेना अपने आप में, कैसा किया, भाव भाषण किया कि नहीं किया। हम पढ़ते ही रहे, सुनते ही रहे, दिमाग लगाते रहे, तर्क वितर्क करते रहे, अनुमान करते रहे, फिर भी कुछ हुआ नहीं, भाव भाषण नहीं हुआ। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में न मिलाता, शुभ भाव को अलग जानता, ज्ञान को आत्मभाव को अलग जानता, अन्य तत्व में अन्य तत्व नहीं जानता, आत्मभाव में, स्वभाव में और विभाव में उसको एकत्व होता नहीं। परंतु इसका ठिकाना नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार यह 11 अंग तक पढ़े, कितना पढ़े, 11 अंग तक पढ़े, पढ़ ले तथापि सिद्धि नहीं होती। सो समय सारादि में मिथ्या दृष्टि को 11 अंग को ज्ञान होना लिखा है, ऐसा समय अभ्यवे को भी 11 अंग का ज्ञान होता है, वो कभी सम्यक दृष्टि होने वाला नहीं है, क्योंकि वो इस दिशा में प्रयत्न नहीं करेगा। समझ करके अनुभव के दिशा में हम प्रयास नहीं करते हैं तो जो ऐसा अभव्य नहीं करता है, ऐसी बात हो जाएगी। इसलिए जो बात समझी है उसको अनुभव की दिशा में ले आना है, प्रयोग के क्षेत्र में उसको ले आना है। भाव भाषे इसके लिए प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए वो बात ठीक है। तो हमने समझा कि राग में दुख है, कितनी सादी बात है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, फिर राग में दुख अनुभव क्यों नहीं करते। जब राग में दुख है तो दुख तो लगना चाहिए, वो तो लगने का भाव है, समझने का भाव नहीं है। दुख लगने का भाव है, समझने का भाव नहीं है। तो राग में दुख है वो समझने के लिए हम तैयार है, समझ करके समझ में रख देते हैं, और चीज है अनुभव के, और अनुभव के विषय में हम देखते नहीं है कि हमको राग हो रहा है, उसका दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं देखते हैं। हमारे चलते हुए परिणाम को हम क्यों नहीं देखते कि उसमें दुख है या नहीं है, लगे नहीं लगे पीछे की बात, पहले जांच तलाश तो करें कम से कम। तो उस प्रकार से प्रयोग की दिशा में हम एक कदम भी नहीं बढ़ाते, न्याय से, तर्क से, आगम से, युक्ति से, अनुमान से, सब प्रकार से पक्का कर लेते हैं, लेकिन वो पक्का कच्चा ही रहता है, पक्का होता नहीं है, ये कहना चाहते हैं, यही कारण है। जिसका प्रकार से समझना चाहिए, जैसे राग दुख है, हमारे परिणाम में राग हो, परिणाम में हो रहा है, वहां हम दुख अनुभव नहीं करें तो वो कोई समझने का तरीका है क्या। हमारे तत्व ज्ञान में जितने भी भावों की चर्चा या कथन आता है, ये भाव हमारे में होते हैं, तो उस भाव को पकड़ करके हम नहीं समझे और इस भाव को छोड़ करके ही हम समझे, तो ये तरीका सही है क्या, वो बात कैसे सही है। जिस भाव की चर्चा करते हैं, कथन करते हैं, उस भाव को तो हम हमारे में चलते हैं उसको भी नहीं समझने का कोशिश करते हैं, तो ये भाव की बात चल रही है, किस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारे वर्तने वाले किस भाव की चर्चा कर रहे हैं, इसका निर्णय नहीं करे और चर्चा करते ही रहे तो कहां से भाव वासन होगा और कहां से अनुभव होगा, ये बात है। हाँ, चलते परिणाम पर उपयोग ले जाना है और ले जा करके हमको क्या अनुभव हो रहा है वो अनुभव हमारे अनुभव से उसको समझना है, न्याय तर्क से नहीं समझना है, अनुभव से अनुभव की समझ करना है, अनुभव की समझ बिना अनुभव अनुभव छोड़ करके करना है। वो पद्धति कहाँ से ठीक है, तो क्योंकि वो पद्धति गलत नहीं है, है ही गलत ही है, इसलिए भाव वासन नहीं होता है। देखे कि पंखे की हवा क्या हमारे आत्म प्रदेश को स्पर्शती थी, क्या अंदर आती थी, क्या ठंडक
नहीं,
ज्ञान ठंडा होता था क्या, न प्रदेश ठंडा होता था न ज्ञान ठंडा होता था। और जब पंखा बंद हो गया तो जो भी गर्मी है वो न हमारे आत्म प्रदेश को छूती है न अंदर हमारे ज्ञान में उसका प्रवेश होता है। तो हम अनुभव करें इस विषय का, क्या करें, हम अनुभव करें क्या होता है इसका, अनुभव करें वास्तविक पर वस्तु स्थिति का अनुभव करें हम, और अनुभव से उसका ज्ञान करें, ऐसे नहीं करें अनुभव से ज्ञान करें। तो ये हमारा पूर्वग्रह है, क्या है
पूर्वग्रह,
हमारा यह है कि पंखा चलने से हमें अनुकूलता है, पंखा बंद हो जाने से हमें प्रतिकूलता है। तो ये हमारा पूर्वग्रह से हम आगे चलते हैं। मिथ्या आग्रह कहो या मिथ्या पूर्वग्रह कहो, एक ही बात है। कभी कभी वहां तो आपने सोनगढ़ में तो स्वाध्याय हॉल में प्रवचन हॉल में शुरू से अभी तक पंखा है ही नहीं, और गर्मी भी सोनगढ़ में बहुत पड़ती है, तो कभी कभी कोई सातासिलिया भी लोग सुनने को आते हैं। सातासिलिया में मतलब क्या, तो बहुत साता जिसको चाहिए, थोड़ी भी असाता जो बर्दाश्त नहीं कर सके, तो क्या है कि वो शास्त्र के पन्ने कोई हाथ में आते हैं तो ऐसे ऐसे हवा खाने लग जाते थे, गुरुदेव बहुत थपकारते थे उनको कि नरक में अनंत बार गए हो, कितनी गर्मी है वहां, लाख मुण का लोहे का गोला भी पिघल जाए उतनी गर्मी है वहां तुम रहे हो, और उधर थोड़ी भी गर्मी तुमको बर्दाश्त नहीं होती है, ये अभिनय होता है शास्त्र जी का, अभिनय होता है शास्त्र रचने वाले श्री गुरु आचार्य का भी अभिनय होता है, और दर्शन मोह की वृद्धि होती है, ये बात, अभिनय से दर्शन मोह बढ़ता है। और जो शास्त्र है उसका उपदेश है वो लागू पड़ेगा नहीं, चढ़ेगा नहीं, ये हालत हो जाएगी। जहाँ हवा है ऐसे खिड़की के पास बैठ जाए, हम
दुख हो
रहा है, पंखा नहीं चलाए या खिड़की के पास बैठ जाए वो ठीक है क्या है? हम गुरुदेव के सन्मुख बैठ करके अच्छी तरह ध्यान देने की जगह पर बैठ करके न समीप बैठ करके उपदेश को क्यों नहीं ग्रहण करें? हमको हवा ग्रहण करनी है या उपदेश ग्रहण करने को आए हैं? हवा खाने को आए या उपदेश लेने को आए हैं? क्या करने को आए हैं? हमारा क्या हेतु क्या है वहां आने का?
और
पहले से तुम्हारा ध्यान तो हवा में गया, और फिर उपदेश में ध्यान जाएगा कहाँ से? ध्यान तो हवा में चला ही गया और छोड़ गया वहां, फिर वो ध्यान उपदेश में जाने वाला है नहीं, उछल पकड़ा है। अगर हमको गर्मी होती है तो हमारा उपयोग नहीं रहता है, अगर हमको अनुकूलता रहती है तो हमारा उपयोग रहता है, ये छल पकड़ा है। ऐसा है
नहीं।
यहाँ कोई कहे, यहाँ तक तो आए थे अपन, यहाँ कोई कहे कि ज्ञान तो इतना होता है परंतु जैसा भव्यसेन को श्रद्धान रहित ज्ञान हुआ वैसा होता है, प्रश्न करता है। भव्यसेन की कोई कथा आती है क्या? पता नहीं, भव्यसेन लिखा है ना, उसको भव्यसेन कहते हैं, मिथ्या दृष्टि ग्यारह अंग नौ पूर्व का पाठी है। ज्ञान तो होता है, वो श्रद्धान रहित ज्ञान होता है। अच्छा ठीक है, कहीं कोई कथा आती है, यानी हम सुनते हैं कि आत्मा में सुख है, विश्वास है क्या? प्रतिकूलता में दुख नहीं है, विश्वास है क्या? बस वो सवाल है, तो श्रद्धा की कहाँ से? जब विश्वास नहीं है तो श्रद्धा होगी कहाँ से, ये बात है।
विश्वास और श्रद्धा में क्या अंतर
है? विश्वास ज्ञान की पर्याय है, जो विश्वास होने पर ही श्रद्धा होती है। ज्ञान होता है जानकारी वाला, लेकिन विश्वास नहीं होता है तो श्रद्धा नहीं होती है। जान करके विश्वास आता है तो श्रद्धा होती है, ऐसा ज्ञान का एक विशिष्ट पर्याय है। ज्ञान की पर्याय में अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, कितनी अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, वो बात जो नहीं समझते हैं उनको पता नहीं लगता है, वो दूसरे दूसरे गुण में खता लेते हैं उसको। या कि विश्वास श्रद्धा का रूप हो सकता है, तो पर है ज्ञान की पर्याय, ज्ञान के पर्याय को श्रद्धा गुण का भी रूप है तो वो विश्वास है, उतना ले सकते हैं। जैसे ज्ञान किसी को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं, असंग रहता है, निष्प्रय रहता है, वो चारित्र प्रधान उसका रूप है, ये श्रद्धा प्रधान इसका रूप है, पर है पड़ा है वो अस्तित्व प्रधान इसका रूप है, ऐसे ले सकते हैं। रुचि को हम श्रद्धा गुण में ले जाए तो अच्छा रहेगा, कभी ज्ञान गुण में भी लिया जाता है, ज्ञान गुण के पर्याय तो श्रद्धा को भी ज्ञान गुण के पर्याय, चारों को लिया है ज्ञान गुण के। हाँ तो श्रद्धा ज्ञान में इसलिए लिया है वहाँ कि वो सम्यक पहले की बात चली है, तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही श्रद्धा होती है, इसके पहले ये ज्ञान साधन है, इसलिए सभी ज्ञान की पर्याय लिया है, ऐसा लिया। तो श्रद्धा प्रधान वो ज्ञान का रूप समझना वहाँ है ज्ञान के पर्याय। हाँ पहले ये श्रद्धा रुचि प्रतीति लक्ष्य करना चाहिए, ऐसा करके आया है, फिर पुरुषार्थ जगेगा, चैतन्य वीर की स्फूर्णा होगी, वो बात लिया है। का समाधान देते हैं, वह तो पापी था जिसे हिंसादि की प्रवृत्ति का भय नहीं था, अभव्यसन जो था वो तो पापी था, उसको हिंसादि प्रवृत्ति का भय भी नहीं था, परंतु जो जीव ग्रैवक आदि में जाता है, हम क्या पंडित जी आज आगे लेते हैं कि सही ज्ञान करके, सही बाह्याचरण करके, मुनि आदि का दीक्षाधारी का नवमी गिरिवक में जाता है, उसके ऐसा ज्ञान होता है, वह तो श्रद्धान रहित नहीं है, उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि यह ग्रंथ सच्चे हैं, तो प्रश्न चलता है, समाधान में प्रश्न चलता है, क्या उसको तो ऐसा ही श्रद्धा ने का समय सार तो सच्चा ग्रंथ है, हम उसका स्वाध्याय करते हैं, परंतु तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ। ग्रंथ को सच्चा माना, गुरु को सच्चा माना, देव को सच्चा माना, इनके वचन को सच्चा माना, लेकिन सत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ। समय सार में एक ही जीव के धर्म का श्रद्धान, ग्यारह अंग का ज्ञान और महाव्रतादि का पालन करना लिखा है। प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि दोनों में आया है कि आगम ज्ञान ऐसा हुआ कि जिसके द्वारा सर्व पदार्थ को हस्तामलकवत जानना है, जानता है, हाथ में आंवला है कैसे जान लेता है, यह भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूँ। क्या ये ज्ञेय है, मैं जानने वाला हूँ, ये सब ज्ञेय है, ऐसा भी जानता है। परंतु देखो, ये परंतु करके बात करते हैं, वो सही करते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता, जानता है कि मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव नहीं करता। पर अनुभव होता तो भिन्न द्रव्य है, उसका भिन्न अनुभव आएगा, तो अन्य द्रव्य से भिन्न हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। क्या महत्वपूर्ण बात हुई कि जानकारी होती है, अनुभव नहीं होता है। ये भाव भाषण है, वो अनुभवान से होता है, इसलिए अनुभव पद्धति की वो प्रक्रिया और स्टेज है, बाद में अनुभव यथार्थ रूप में आत्मज्ञान रूप आ जाता है। तो लाइन कहाँ से अलग पड़ती है, शास्त्र पढ़ने वाले की लाइन कहाँ से, अनुभव वाली लाइन कहाँ से अलग पड़ती है, बिना अनुभव वाले कैसे चलते हैं। बस दो लाइन है, एक तो शास्त्र पढ़ाई करते हैं, शास्त्र का पठन किया करे और अनुभव नहीं होता है, और कोई शास्त्र का पठन करे नहीं करे अनुभव होता है, क्या कारण है। पठन करने वाले को अनुभव नहीं भी होवे, नहीं पठन करने वाले को अनुभव हो भी जाए तो बात कोई दूसरी है, वो बात तो समझना चाहिए कम से कम, दूसरी बात वो है। तो अनुभव पद्धति में आता है, वो भाव भाषण में आकर के अनुभव को लेता है, और जो पठन की पढ़ाई की किया करता है, अनुभव की दिशा में उसका प्रयास नहीं है, तो कितना भी अज्ञारंग नौ पूर्व तक का हो जाए उसको ज्ञान अनुभव होता नहीं।
बिना शास्त्र पढ़े होता है,
हाँ बिना शास्त्र पढ़े भी अनुभव होता है, पूर्व संस्कारी होता है। और कभी किसी को क्या है कि बहुत कम मात्रा में श्री गुरु का संपर्क रहता है, तो अपने मुद्दे की प्रयोजन की बात वो प्रत्यक्ष योग में समझ लेता है, शास्त्र नहीं पढ़ता है। जैसे सुभाग भाई हमारे थे, तो उतना शास्त्र नहीं पढ़ते थे, पढ़ने का उनका कोई प्रकार ही नहीं था, लेकिन प्रत्यक्ष योग कृपालु देव का मिलता रहा उन्होंने, तो जो बात समझनी चाहिए अपने प्रतिबंधक कारणों की वो उनको समझ में आती थी, और जो बात हमारे प्रयोजन की हमें समझनी चाहिए वो समझा देते थे। भले ही कोई शास्त्र आधार देते थे, लेकिन खुद तो उतना शास्त्र नहीं पढ़ते थे, तो ज्ञान हो गया, वो संस्कारी भी नहीं थे। तो हमारा ध्यान वहाँ जाना चाहिए कि उसने क्या किया और हम क्या नहीं कर रहे हैं, बस उतनी बात है। उन्होंने ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा कि हम किन किन ग्रंथ का स्वाध्याय करें, ऐसा विचार नहीं किया। उन्होंने एक ही ध्यान रहा उसका कि हमको प्रत्यक्ष आत्मज्ञानी पुरुष मिल गए हैं, वही हमको रास्ता दिखाएंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा हम कर लेंगे, हमको पढ़ना वो करना हमारी इच्छा से, हमारे निर्णय से, हमें कोई स्वच्छंद में नहीं जाना है, हमारे विचार से नहीं चलना है, उनकी आज्ञा से हमें चलना है। तो उसमें चलना है बात आती है, पठन करना है, पढ़ना है, वो बात कहाँ आई। वो कहेंगे कि पढ़ो तो पढ़ेंगे, वो कहेंगे मत पढ़ो तो मत नहीं पढ़ेंगे, वो कहेंगे कि बैठ जाओ तो बैठेंगे, चले जाओ तो चले जाएंगे। बस बात उतनी नहीं कि वो कहेंगे वैसा करेंगे, वो बात है। तो वो ज्ञानी के मार्ग पर चलने का उनका दृढ़ निश्चय था, ऐसा एक काम उसने कर लिया तो तिर गए। ज्यादा कर क्या करता है मुमुक्षु, अपनी मनमानी कर लेता है, इसी का नाम स्वच्छंद कहा है। धर्म के क्षेत्र में अपनी मनमानी करना, उसी का नाम स्वच्छंद है। और ये सबसे बड़ा दोष कोई होता है धर्म के क्षेत्र में, तो वो ये होता है। ये मैं ऐसा करता हूं, ये बात भूल जाने के है। ऐसी बात है। आचार्य का शास्त्रों समझने की कैपेसिटी तो चाहिए ना, अभी तो गुरुदेव का प्रवचन समझने की भी कैपेसिटी नहीं दिखती है, आचार्य की बात तो कहीं रही। ऐसी बात है, गुरुदेव तो खोल खोल के बताएं, फिर भी प्रवचन पर स्वाध्याय करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, तो गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। प्रवचन पर प्रवचन देने की बात नहीं है, प्रवचन पर सत्संग करे, स्वाध्याय करे, समझने की कोशिश करे, तो थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, ऐसी परिस्थिति रही है। मूल शास्त्र पढ़ने की तो किसी की कैपेसिटी दिखने में नहीं आती है, फिर भी मान लेते हैं कि हम तो मूल शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे हाथ में समय सार है, आगम हमारे हाथ में है, हम तो आगम में वो करते हैं वो करते हैं, ये सब स्वच्छंद वाली बात है। संस्कार वो है कि सजीवन मूर्ति के प्रत्यक्ष योग में जो भी आत्म स्वरूप सुना है उस वक्त बहुत रुचि से सुना है, योग्यतावश उतनी उसकी रुचि हुई, उतनी रुचि हुई कि उसके जो स्वभाव भाव है उसकी रुचि हुई, पर उसके कुछ इम्प्रेशन छाप आत्मा में पड़ गई जो कभी जाने वाली नहीं है। ये ध्रुव की इम्प्रेशन भी ध्रुव होती है, क्या ध्रुव की इम्प्रेशन भी ध्रुव होती है। तो उस भाव में या कभी दूसरे तीसरे भाव में तो उसको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूप परिणमन हो ही जाता है। हाँ, प्रकट हो, उसकी भी अभिव्यक्ति हो जाती है। बस ऐसी एक चीज है, जैसे गुरुदेव संस्कार लेके आए थे, यहाँ कोई सम्यक ज्ञानी गुरु तो नहीं मिले थे, लेकिन वहां समोसरण में सुना, सजीवन मूर्ति साक्षात सिमंदर परमात्मा से सुना, उस वक्त अध्यात्म तत्व की उतनी रुचि थी, उतनी रुचि थी कि स्वभाव के संस्कार पड़ गए आत्मा में। तो यहाँ समय सार मिलते ही वो संस्कार जो है वो जागृत हो गए। बहुत जीवंत दृष्टांत है गुरुदेव का, जीवन का ये जीवंत दृष्टांत है हमारे सामने, और हजारों लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं समय सार को, क्यों ज्ञान नहीं होता है? संस्कार तो है नहीं, और न सजीवन मूर्ति का योग है, योग है तो न इसकी आज्ञा पे चलने का हमारा अभिप्राय है, हमारी योग्यता नहीं है, हम चलते नहीं है, हम स्वच्छंद से चलते हैं, तो ऐसे तो ज्ञान होने वाला नहीं है। हाँ, वो तो अनादिश स्वच्छंद का संस्कार तो चालू ही है, उसमें क्या नई बात है, भटकने का तो है ही, उससे क्या होगा, भटकेगा।
इसी प्रकार
श्रीमन जी
को हुआ,
इसमें भी समय सार निमित्त पड़ा है, गोपाल देव को भी समय सार ही निमित्त पड़ा है, इसलिए उन्होंने शास्त्र कोई मंदिर बंदिर के वो उसमें नहीं गए, उस प्रकार का पुण्य योग भी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक संस्था चालू किया, परम श्रुत प्रभावक मंडल, शास्त्र प्रकाशन की संस्था अपने हाथ से खोल करके वो गए, और उसी संस्था में आज बहुत से शास्त्र प्रकाशित हुए, और उसी संस्था में प्रकाशित हुए समय सार गुरुदेव के हाथ में आए। गुरुदेव अपने प्रवचन में बोले हैं कि हमारे उपकारी है, कृपाल गुरुदेव हमारे भी उपकारी है, ऐसे बोले हैं, और आप सब मोक्षों के हाथ में आज समय सार है, वो भी वही कारण से है, ऐसा बोले, क्योंकि हमको मिला तो हमने सबको उस बात को आगे किया, तो हमको वहां से मिला, उसी संस्था से मिला है। तो वो जो सज्जन होते हैं थोड़े के उपकार को भी कभी नहीं भूलते, ऐसी बात है। स्वच्छंद से बचने के लिए गुरु को मुख्य करना चाहिए, ज्ञानी को मुख्य करना चाहिए, ज्ञानी को गुरु को मुख्य करना करने से स्वच्छंद से बच सकते हैं। ये आसान उपाय तो वही है, सबसे आसान उपाय वही है। मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय, निज छंद को या स्वच्छंद को तो जाएगा नहीं, जाता सदगुरु चरण मा अल्प प्रयास है, आसानी से अल्प प्रयास से चला जाए। तो क्या लिखा है, यो भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं एक नायक हूं ऐसा जानता है, लेकिन मैं एक नायक हूं ऐसा अनुभव नहीं करता है, बस वही अंतर है। यहां तक तो हम पहुंचे गुरु कृपा से कि मैं एक नायक हूं, मैं एक नायक हूं, मैं एक नायक हूं, अच्छी तरह समझते हैं, समझा सकते हैं, बोलते हैं, बुलाते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इस प्रकार स्वयं को अनुभव नहीं करता, स्वयं को अनुभव नहीं करता, करता तो परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य रूप अनुभव कर लेता, उसमें परद्रव्य से भिन्नपना का अनुभव आए बिना रहता नहीं। इसलिए आत्मज्ञान शून्य, मैंने आत्म अनुभव शून्य, आत्मज्ञान शून्य माने आत्म अनुभव शून्य, आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। कुछ तो कार्यकारी होगा कि नहीं, हाँ कुछ नहीं, पहले तो विपरीत जानते थे, अब अविपरीत जानना तो हुआ कि नहीं हुआ, विपरीत जानते थे तब भी अनुभव नहीं हुआ, और सही जानने पर भी अनुभव नहीं हुआ, तो अनुभव नहीं हुआ इस विषय में तो वो की वो बात रह गई, क्या फर्क पड़ा, पर मार्ग तो अनुभव है, मोक्ष मार्ग तो अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा तो कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं।
तो खतरा और बढ़ गया था, खतरा और बढ़ गया,
क्या बढ़ गया,
जानते नहीं थे तो अनुभव भी नहीं करता, जानते हैं फिर अनुभव या खतरा बढ़ गया,
हाँ जोखिम बढ़ता है थोड़ा, खतरा क्या, जोखिम बढ़ता है, जिम्मेवारी बढ़ती है, और ऐसा जानने पर भी नहीं अनुभव करेंगे तो फिर तो अनुभव करने का तो कोई दूसरा तो इलाज है भी नहीं, जानकारी पूर्वक अनुभव होता है, जानकारी किया फिर अनुभव नहीं किया तो फिर तो कोई जगह ही आगे बढ़ने की नहीं रही।
मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान नहीं परंतु वेदन पूर्वक ज्ञान आए,
वेदन पूर्वक ज्ञान भिन्न पड़ जाता है, वेदन बिना भिन्नता होती नहीं, बिना ज्ञान में ज्ञान वेदन भिन्नत्व अनुभव में नहीं आता, इसलिए मात्र ज्ञान कहने से वेदन ज्ञान ले लेना, मात्र ज्ञान लेने में सिर्फ जानकारी वाला ज्ञान नहीं लेना, वेदन ज्ञान लेना, क्योंकि मात्र भिन्नता का सूचक है, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है, ऐसी बात है, क्योंकि उसमें भिन्नत्व नहीं होता, और मात्र कहने से भिन्न हो जाता है कि मैं अकेला ज्ञान स्वरूप। इतना समय सार में तो लिया है कि तुमको अनुभूति स्वरूप तुम्हारा तुम्हारा ज्ञान ही अनुभूति स्वरूप है, जिसका अनुभव हो ही रहा है। जो आपत्ति वो है उसमें के जो पर किसी पर के साथ एकत्व का निश्चय है, भाव भाषण झूठा है, वो मिटाने का है, इसलिए वो अनुभूति मालूम पड़ती नहीं है। कि ज्ञान में ज्ञानानुभव है वो मालूम नहीं पड़ता है, उतनी सी बात है, उसको ठीक करो। अनुभूति स्वयं आविर्भूत होकर के प्रकट अनुभव में आएगी। इसलिए आगम ज्ञान आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है, थोड़ा भी कार्यकारी नहीं है। थोड़ा कार्यकारी मानने से भी संतोषपना संतोष आ जाएगा कि थोड़ा तो कार्यकारी हुआ है, अब ज्यादा आगम ज्ञान करके ज्यादा कार्यकारी करो, ये हो जाएगा। इस प्रकार यह सम्यक ज्ञान के अर्थ जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, तथापि इसके सम्यक ज्ञान नहीं है, यही कारण है। बहुत साफ लिखा है अनुभव के विषय में कि सम्यक ज्ञान के हेतु से अर्थ मैंने उसी कारण से वो शास्त्र का अभ्यास करता है, और होता नहीं है। अनंत बार किया है, हुआ नहीं है, ये बात है। बहुत प्रयोजनभूत विषय है हमारे लोगों के लिए, ये बहुत प्रयोजनभूत विषय है। क्या रह जाता है, हम क्यों अनुभव की दिशा में प्रयास नहीं करते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, चर्चा करते ही रहते हैं, ये क्या? हमको वहाँ बिल्कुल लाइट हो जानी चाहिए। अब ये ज्ञान का प्रकरण पूरा करके पंडित जी साहब सम्यक चारित्र की बात करेंगे। कुछ आचरण भी धर्म के क्षेत्र में करने वाले होते हैं, उनको भी मोक्ष मार्ग क्यों नहीं मिला, और आगम में कहे उस विधान के अनुसार आचरण किया, क्या जिनाज्ञा अनुसार आचरण किया, फिर मोक्ष मार्ग क्यों नहीं मिला, ये बात करेंगे। खास करके अनादि से जो बाह्य दृष्टि है, उस बाह्य दृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बात समझ करके, अंतर्ज्ञान की अंतर तत्व की बातें सुन करके समझ करके भी फर्क नहीं पड़ा, उन लोगों को बाह्य त्याग की महिमा आए बिना रहेगी नहीं। थोड़ा भी बाह्य त्याग दिखेगा उसको आदर करने लग जाएगा, पर उनको ये लगे कि इसमें बुरा क्या है, हम त्यागी व्रती का आदर करते हैं तो इसमें क्या बुरा है, लेकिन हमारी बाह्य दृष्टि का हम आदर करते हैं वो बात भूल जाते हैं उसमें। पर बाह्य दृष्टि से ऐसा ऐसी प्रवृत्ति करने वाले को अंतर दृष्टि खुलती नहीं, ये नुकसान होता है, उसका पता नहीं चलता है, और मानते हैं कि इसमें क्या है, जो त्यागी है व्रती है उनका मान सम्मान आदर हमें करना चाहिए, तो जगत में वही ज्यादा होता है। हाँ दर्शन में बढ़ता है, बाह्य दृष्टि दर्शन में का बिल्कुल विनाभावी है, वही बाह्य दृष्टि को दर्शन में को एक ही बात है, और उसको हम बढ़ावा दें तो बढ़ जाए क्या, उसको तो बढ़ावा दे ही रहे हैं बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और सभी संप्रदाय में, जैन अजैन सभी संप्रदाय में बाह्य त्याग की बहुत बहुत महिमा है, लोग इसके पीछे अंधे हो जाते हैं, ये बात है। संप्रदाय में तो संप्रदाय जब गुरुदेव ने अंतर्दृष्टि की बात खोली, कई बातें अंतर्दृष्टि की बताई, फिर भी हमारे लोगों में वो बात नहीं गई है। हमारे भी ज्यादा संख्या तो बाह्य दृष्टि में वो बाह्य त्याग वाले को ही महिमा करने वाले हैं, ये हुआ था कि नहीं हुआ, निर्मल कुमार जी का ये हुआ था कि नहीं हुआ, वो अंधे थे ना निर्मल कुमार जी, गुजर गए अभी नहीं है। वो एक एक बार खाना खाते थे, एक बार से 24 घंटे में एक बार खाना खाते थे, तो हमारे गुरुदेव के सुनने वाले कितने भाई बहन इसके पीछे लग गए। अरे ये तो गुरुदेव से भी आगे, गुरुदेव तो आजकल दो दफे खाना खाते, एक दफे दूध लेते, तीन दफे आर हो गया ना, तो एक ही दफे लेते हैं। और बात गुरुदेव कहते हैं ऐसी ही कहते हैं, तो बात तो दोनों की एक सी हो गई और इनका आचरण अधिक हो गया, कई लोग पीछे लग गए इसके, तो उसमें दर्शन में बढ़ गया, उसका कोई पता नहीं चला। हाँ पंचम गुरु स्थान मानने लग गए थे कितने लोग, तो ये बात हो गई थी। वही प्रकरण कहेंगे, तथा इनके सम्यक चारित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है, कहाँ दृष्टि है? बाह्य क्रिया पर, के बाह्य क्रिया हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाती है, हुई अच्छा हुआ ये हो गया। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, उपवास कर लेता है परिणाम बिगड़ जाता है, नहीं उपवास तो पूरा करना ही चाहिए, या तो हम पहले ज्यादा खा लेंगे या तो फिर पालना के वक्त में ज्यादा खा लेंगे, लेकिन उपवास तो करेंगे ही करेंगे। परिणाम तो पहले भी बिगड़े पीछे भी बिगड़े, तो बीच में तो बिगड़ने वाले है ही, भूख तो लगेगी, आदि मध्यंत में यही बात हो जाएगी। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और यदि परिणामों का भी विचार हो, चलो वहां तक भी ले, परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दे उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। कहाँ गए टोडरमल जी, आप अभिप्राय पर बात ले गए। तूने उपवास किया, परिणाम का विचार करते हुए परिणाम में तीव्र कषाई नहीं किया, मानो मान लिया, मंद कषाई रहा, मानो थोड़ा नजदीक में तो कहेंगे कि अभिप्राय में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, चलो समझ में बराबर समझे, आचरण में बराबर आचरण किया, अभिप्राय बदला के नहीं बदला, क्योंकि श्रद्धान का ताल्लुक अभिप्राय के साथ है, सीधे परिणाम के साथ नहीं है। देखो अभिप्राय पर तो अपना सारा आर्टिकल आ गया, इसलिए आत्म जागृति में कि परिणाम की भूमिका में अभिप्राय का बहुत बड़ा रोल है, परिणमन में अभिप्राय का बहुत बड़ी भूमिका है इसकी। तो ये बात सुगानी जी के वचन में तो बहुत आई है और टोडरमल जी साहब भी यहाँ पर वो बात ले गए कि कोई बाह्य क्रिया करता है, सही करता है, मंद कसाई से करता है, आगम पढ़ करके सोच समझ करके करता है, तो भी गलती अभिप्राय में नहीं, जो नहीं छूटी बात सब चौपट हो जाएगी। इसलिए सुगानी जी ने तो एक सूत्र जैसे बात दी है अपने वचनों में के अभिप्राय प्रधानी हो जाओ योग्यता प्रधानी हो जाओगे, पहले अभिप्राय प्रधानी हो जाओ योग्यता प्रधानी हो जाओगे। तो क्या करते हैं लोग, पहले योग्यता प्रधानी होते हैं, अभिप्राय की बात छूट जाती है, समझ में ही नहीं रहती है, विचार ही उसका नहीं रहता है, और योग्यता ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार के तौर तरीके लगाते रहते हैं।
योग्यता माने क्या?
योग्यता मैंने अपनी वर्तमान स्थिति सुधारना, जो अभी योग्यता वर्त रही है उससे कुछ ठीक करना। तो बिना अभिप्राय को ठीक किए हम योग्यता को सुधार करने जाएंगे, ये योग्यता सुधरने वाली नहीं है, ऐसी बात है। ये साइंस है, बिल्कुल परिणाम का ये विज्ञान है, साइंस है कि पहले क्या करे पीछे क्या करे। हम क्रम छोड़ के कुछ नहीं कर सकते, जो विज्ञान का अनुक्रम है उसको छोड़ करके हम करने जाएंगे फेल हो जाएंगे। क्रम भंग हमारा प्रयास है, क्रम भंग प्रयास से कोई काम सफल नहीं होता, ये वस्तु स्थिति है, उसको हम बदल सकते हैं, ये बात है। जैसे पूज्य बेंसरी ने एक वचनामृत दिया है कि कई लोग क्या करते हैं कि भाई शुद्धोपयोग तो आत्मा में लीन होने से होता है, तो हमारे उपयोग को आत्मा में स्थिर करने के लिए हम प्रयोग करें, ध्यान आदि का कराते कि नहीं कराते, हम चिंतन करें, हम हमारे उपयोग को स्थिर करने का कोशिश करें। तो उन्होंने क्या लिखा कि जिसकी जिसको आत्मा की रुचि होती है उसको ही अपना आत्मा में उपयोग जाएगा, रुचि बदले बिना उपयोग बदलता नहीं है, ऐसा लिखा है। पहले रुचि को पलटाओ, उपयोग स्वयं पलटेगा। रुचि तो पलटा ही नहीं, पर उपयोग को पलटाने के लिए हम प्रयास करते, अभ्यास करते, प्रयोग करते, तो प्रयोग सफल होने वाला नहीं है, ये बात है।
योग में आत्मा को जाने बिना रुचि कैसे होगी? पहले उपयोग से आत्मा को जानेगा तभी तो उसमें रुचि होगी।
बात वो है कि रुचि कहाँ से पैदा होती है वो पहले समझते हैं। पहले वो समझना है कि रुचि कहाँ से पैदा होती है, ये बात अगर हमारी समझ में आ जाएगी तो फिर कहीं गड़बड़ किसी स्तर पे नहीं होगा। तो जो रुचि पैदा होती है वो जरूरत में से होती है, जरूरत में से रुचि पैदा होती है, जरूरत लगी उसकी रुचि है। रुचि का क्या स्वभाव है कि उसको लिए बिना रहेगा नहीं, थंबेगा नहीं, उसको थाम नहीं है कहीं, रुचि को थाम नहीं होती। तो उसको जरूरत लगी क्या, वो बात है। जरूरत लगने से ये रुचि आगे बढ़ेगी, वो बात है। हमको निर्दोषता की, पवित्रता की, सुख शांति की जरूरत है क्या, तो उसी दिशा में हमारी रुचि और हमारा पुरुषार्थ चलेगा और हमारे ज्ञान की प्रवृत्ति भी सही होगी रुचि के कारण से। बिना रुचि वाली ज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो शुष्क ज्ञान वाली हो ही जाती है, ये बात है। इस प्रकार से रुचि का जो प्रारंभ है या रुचि का जो कोई मूल है तो उस प्रकार से है। हाँ, अभिप्राय बदलता है। सबसे बड़ा काम पूर्णता के लक्ष्य में होता है तो अभिप्राय पूरा का पूरा बदल जाता है कि हमें किसी भी कीमत पे संसार नहीं चाहिए और हमें किसी भी कीमत पे हमारी पूर्ण शुद्धि और हमारा पूर्ण सुख और पूर्ण पवित्रता ही हमें चाहिए, बस पूरा अभिप्राय बदल जाता है। यानी अनादि का संसार करने का भोगने का जो अभिप्राय है वो छूट जाता है और एक आत्मा ही चाहिए और आत्मा आत्मसुख ही चाहिए, आत्म शांति ही चाहिए, ये अभिप्राय बन जाता है। अभिप्राय पलटता है तो योग्यता स्वयं पलटने लगती है, ये बात होता है। देखो क्या कहाँ ले गए, देखो
पर्याय लेना,
पर्याय मोक्ष अवस्था, पर्याय
सबसे पहले पर्याय दृष्टि कराने का बात आ गई इसमें तो ऐसा
दृष्टि में श्रद्धा तो नहीं कराते, श्रद्धा तो पलटेगी स्वानुभव के काल में। इसके पहले कहाँ कहाँ किस प्रकार का फिरफार होने का अनुक्रम है, तो प्रारंभ का वो अनुक्रम है कि हम श्रद्धा भी क्यों करें। चलो हमारा ये प्रश्न है कि द्रव्य की श्रद्धा क्यों करना।
जैसा
है वैसा, लेकिन क्यों,
आवश्यकता क्या है,
आवश्यकता क्या है इसकी बड़ी। ये बात आए बिना रहेगी नहीं। और अगर हम पर्याय के विषय में उतना एलर्जिक कंडीशन में आ गए तो श्रद्धा भी क्यों करनी, वो भी एक पर्याय है। उसको भी क्यों लेते हो बीच में, द्रव्य दृष्टि भी क्यों, क्यों? द्रव्य दृष्टि कोई पर्याय नहीं है क्या, वो खुद ही तो पर्याय है। तो हम कल्पना विहार में है क्या, हम पर्याय के विषय में हमारा जो एलर्जिक कंडीशन हो गया है कि पर्याय के बाद क्यों आई, हम कल्पना विहार में हैं। वास्तविकता क्या है, गुरुदेव ने तो शब्द का प्रयोग किया है कि ये वास्तविक शुरुआत है, काल्पनिक बात नहीं है, अन्यथा सब बात काल्पनिक है। वास्तविक शब्द का प्रयोग किया है, एक एक शब्द में अनुभव भरा है गुरुदेव का, ये समझना है हमें कि क्या अनुभव है उसमें। ऐसा ही होता है, दूसरी तरह से हो ही नहीं सकता, तीन काल तीन लोक में नहीं हो सकता। सभी ज्ञानियों को ऐसा हुआ है, सभी को ऐसा ही होता है। जब हमारा अनुभव नहीं है इस विषय में, हम क्यों डेट अपन करें, हाँ ओवरवाइज क्यों हो जाए हम। जब अगले अपना अनुभव को प्रस्तुत कर रहे हैं, अनंत ज्ञानियों का वो अनुभव है, फिर हमें तर्क उठाने की जरूरत भी क्या है, आवश्यकता भी क्या है। हम उसी के मार्ग पे चले, उसके बताई दिशा में हम आगे कदम उठाए, दूसरी दिशा में हम क्यों कदम उठा रहे हैं, ये बात है। यथार्थ टंकोत्कीर्ण बात है, तीन काल में फिरने वाली नहीं, ऐसा अनुभव है। एक ज्ञानी का, एक गुरुदेव का जो अनुभव है, अनंत ज्ञानियों का, अनंत तीर्थंकरों का यही अनुभव है। इसके निषेध में सभी का निषेध, ये हो जाएगा। देखो क्या कहां बात आई कि यदि अपने परिणामों का भी विचार हो, देखे नहीं लिया, विचार हुआ कि परिणाम तो मंद हुआ है, कसाई तो तीव्र नहीं हुई है, तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दे, मालूम पड़े कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उन्हीं पर दृष्टि रहेगी, परिणाम पर ही दृष्टि रहेगी, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। अभिप्राय वासना से संबंध रखता है, जिसका अभिप्राय है बार बार वही परिणाम हो जाएगा, और फल और फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। जैसे कि कोई राजा के डर से चोरी नहीं करता है, या समाज के भय से अनुचित कार्य नहीं करता है, लेकिन अभिप्राय में तो वो करने का है, तो उसका फल वही आएगा, क्योंकि उसका जो आश्रव चालू है अभिप्राय अनुसार आश्रव, भले ही परिणाम नहीं करता है लेकिन अभिप्राय वो एक परिणाम है और वो आश्रव चालू है, ये बात हो जाएगी। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, ये अभिप्राय के विषय में बहुत खोलना चाहते हैं, जबकि ग्रंथ पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो कहना चाहते हैं, उनको खुद का बहुत क्षोभ है इस विषय में। वहाँ स्वरूप भली भांति भाषित होगा, जब हम कहेंगे आपको ये बात भली भांति भाषित होगी। अपन भी थोड़ा कल के स्वाध्याय में इसका विचार करेंगे, वो क्या बात है कैसे है विस्तार से।